ये श्लोक बहुत गंभीर है और इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा। क्यों ध्यान पूर्वक सुनना होगा? ऐसे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि इस श्लोक के दो अर्थ हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक जीव परक है, एक भगवत परक है। दोनों अर्थ सही है और प्रभुपाद जी ने, चक्रवर्ती पाद जी इसको भगवान के परक व्याख्या करेंगे, शिला श्रीधर स्वामी जी ने इसको जीव परक व्याख्या करी है और प्रभुपाद जी ने दोनों को मिला दिया है, इसलिए हम दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप मेरे पीछे बोलिए माइक पे। एतद रूपम भगवतो,
एतद रूपम भगवतो,
हिय रूपस्य चिदात्मनः,
रूपस्य चिदात्मनः,
माया गुणैर विरचितम्,
माया गुणैर विरचितम्,
महदादिभिरात्मनि,
महदादिभिरात्मनि।
ओके, अनुवाद देखते हैं। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है, यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने कौन सी व्याख्या करी है? भगवत परक व्याख्या। देखिए, एतद रूपम भगवतो, ये जो भगवान का रूप है, कौन सा भगवान का रूप है? विराट रूप। ही अरूपस्य चिदात्मनः, अरूपस्य मतलब जिनका कोई प्राकृत रूप नहीं है, तो भगवान के बारे में बोल रहे हैं। कैसे उनका रूप है? चिदात्मक रूप है, सचिदानंद विग्रह उनका रूप है। तो ये जो विराट रूप है जिसमें ये धारणा की जाती है कि पाताल उनके चरण है और ब्रह्मलोक उनका सिर मस्तक है इत्यादि, ये एक भौतिक धारणा है। भगवान का ऐसा रूप नहीं है। ही अरूपस्य चिदात्मनः, भगवान कैसे हैं? प्राकृत रूप शून्य, रूप शून्य नहीं बोल रहा हूं मैं, प्राकृत रूप शून्य, उनका तो रूप कहीं स्वरूप जो है इस प्रकार से नहीं है। और ये जो भगवान के जितने अवतार हैं वो कैसे हुए जिनका वर्णन हो रहा था अभी, वह सब सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत में विराट रूप का वर्णन शुरुआत में हुआ है। तो कोई प्रश्न करेगा, अरे भाई इतने सारे अवतारों का अपने वर्णन किया तो विराट रूप को अवतार में क्यों नहीं जोड़ रहे हो? तो कहते ना ना ना, विराट रूप जो है यह आध्यात्मिक नहीं भग, और ये किसके द्वारा रचित होता है? तो कह रहे हैं माया गुणैर विरचितम, माया के गुणों के द्वारा ये रचित होता है और माया के गुणों के द्वारा विरचित महद आदि भीर, तीन गुण होते हैं ना, याद आ रहा है आपको? प्रधान में जब तीनों गुण का साम्य होता है उसमें भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं और फिर वह महतत्व के रूप में परिणत होता है। तो जो महतत्व है, माया गुण, माया के गुणों का प्रभाव है, उसके द्वारा यह भगवान में रचित होता है। मतलब भगवान ही इसके आधार हैं जिसके ऊपर ये विराट रूप रचित रहता है, लेकिन भगवान इससे बिल्कुल अलग है। तो यहां पे आत्मनिक अर्थ हुआ परमात्मा ने, ये एक अर्थ। अब दूसरा अर्थ भी ले लेते हैं। दूसरा अर्थ है जीव परक। इसका लिंक क्या है? कोई कहेगा, अरे भाई जब जीवात्मा का उसके स्थूल और सूक्ष्म देह से संबंध है, स्थूल देह समझते हैं आप, ये जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, और सूक्ष्म देह से संबंध मतलब मन बुद्धि अहंकार से संबंध है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि केवल भगवान का कीर्तन करने से वह संसार के दुख से मुक्त हो जाएगा? जब तक मन बुद्धि अहंकार रहेगा दुख तो रहेगा। तो अगर वो व्याख्या लिया, मतलब ये कोई प्रश्न करे तो कहेंगे ना, एतद रूपम, ये जो आपको जीव का शरीर दिखाई पड़ रहा है, जो भौतिक शरीर दिख रहा है, यह जीव, उस जीव का जो अप्राकृत मतलब प्राकृत रूप शून्य है अरूपस्य, और जो चिदात्मक है जीव जो स्पिरिचुअल है उसका ये रूप नहीं है, ये जो स्थूल और स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसके रूप नहीं है, बल्कि उस पर आरोपित है। किसने किया है? भगवान की माया ने। भगवान की माया जिसे प्रकृति कहते हैं उसके द्वारा रचित है और उसको आत्मा के ऊपर स्थापित किया गया, स्थापित किया मतलब थोपा गया, ऐसे कहना चाहिए। तो ये दो अर्थ लिए गए हैं और आप इसको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी देखेंगे और हम लोग समझने का प्रयास। बहुत कठिन हुआ है, समझ में आ रहा है? देखो एक एनालॉजी ड्रॉ कीजिए, जैसे विराट रूप भौतिक है उसको भगवान पे आरोपित किया जा रहा है और वह कैसे बना है? माया के गुणों के द्वारा, महादादमी। उसी प्रकार से जीव भी अप्राकृत है लेकिन उसके ऊपर ये जो स्थूल और शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एक आवरण की तरह है और उसके ऊपर थोपा गया है, उस जीव का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ माइक पे बताइए। मैं इसलिए दोनों अर्थ ले रहा हूं, आप लोगों को शायद थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में दोनों ही अर्थ लेते हैं। तो आपको समझ में आएगा प्रभुपाद जी वो क्यों बोल रहे हैं। यस प्रभु,
प्रभुपाद जी एक जगह बोले कि ये शरीर आत्मा को एक दंड है,
आत्मा का दंड है, आत्मा के ऊपर आवरण है, कष्ट देने के लिए दिया गया है। ठीक है, ओके, हम लोग अनुवाद पढ़ चुके हैं, थोड़ा लिंक देखते हैं। श्रील गिरधर लाल जी की टीका, यह जो टीका है गिरधर लाल जी की, ये जीव परक व्याख्या के अनुसार है, लेकिन फिर भी इसको समझना चाहिए। पांच श्लोकों में इस बात को, इस प्रश्न को एड्रेस किया जा रहा है। क्या प्रश्न है? मान लो कोई प्रश्न करे, परंतु यदि स्थूल और सूक्ष्म देह से संबंध है तो किस प्रकार विमुक्ति संभव है? तो यदि यह प्रश्न हो तो इस पर कहते हैं कि भगवान की माया से उत्पन्न अविद्या के विलास रूप में जीव का देह द्वय से संबंध है। देह द्वय मतलब स्थूल और सूक्ष्म देह से संबंध है, अन्यथा जीव पूरी तरह से निर्गुण है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन माया के द्वारा ऐसा किया जाता है। और किसकी इच्छा से माया चलती है? भगवान की इच्छा से। और भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा जनित विद्या से इस देह अध्यास की निवृत्ति हो जाती है और फिर जीव मुक्त हो जाता है। इसको पांच श्लोकों में कह रहे हैं। ये मैं फिर से अपने शब्दों में समझाता हूं। देखिए, क्या जीवात्मा का स्थूल या सूक्ष्म देहों से संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो क्यों हम मान रहे हैं अपने आप को शरीर? अविद्या के कारण। आपको याद है ना, माया के तीन भाग बताए गए थे, अविद्या, विद्या और प्रधान। तो उस अविद्या के द्वारा जीव का अध्यास हो जाता है, वह मानने लगता है कि वह शरीर है। क्या ये बातें कठिन हो रही समझने में? समझ में आ रहा है? अपने स्वरूप को भूल जाता है और जो वो नहीं है उसको मानने लगता है कि नहीं? तो यहां ये बोल रहे हैं कि जब भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, भगवान के अवतारों का श्रवण कीर्तन करता है, तो उस अविद्या का नाश हो जाता है। भगवान की भक्ति के कारण उसका नाश हो जाता है, इस कारण से वह अपने इस देह अध्यास से मुक्त हो जाता है। देह अध्यास समझते हो सुंदर माधव प्रभु? देह अध्यास का मतलब क्या है? और ये दोबारा अगर इनको ने उत्तर नहीं दिया ठीक से तो और कोई को पूछूंगा। यस,
कि हम ये देह, आत्मा देह नहीं है, देह से अलग है, भिन्न है।
देह अध्यास का अर्थ क्या होता है? देह में अध्यास मतलब मैं अपने आप को शरीर मानने लगूं, इसको देह अध्यास कहते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बंदर नहीं बैठा रहता है लेकिन लगता है बंदर बैठा है, तो यह अध्यास हो जाता है। इस प्रकार से वहां पे मान लीजिए रस्सी पड़ी है, रस्सी पे पांव पड़ गया, आप समझो सर्प है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि रस्सी नहीं है, लेकिन रस्सी में सर्प का अध्यास हो रहा है। मति ब्रह्म भी कह सकते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा जो विद्या जनित होती है उससे देह अध्यास समाप्त हो जाता है और जीव दुख से मुक्त हो जाता है। इसको पांच श्लोकों में कह रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जीव परक व्याख्या के अनुसार है। अरूप अर्थात अप्राकृत रूप रहित, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये जीव के बारे में। उसका हेतु है, क्यों आप बोल रहे हो अप्राकृत रूप रहित? कह रहे हैं चिदात्मना, अर्थात ज्ञान स्वरूप जीव का यह दृश्यमान स्थूल रूप है, का यह जो दृश्यमान स्थूल रूप है उसको भगवान की माया जो प्रकृति के रूप में प्रसिद्ध है उसके गुणों के परिणाम रूप महद आदि के द्वारा विरचित किया जाता है। थोड़ा कठिन हुआ बता रहा हूं। जीव स्पिरिचुअल है, चिदात्मक है, और वह ज्ञान स्वरूप है मतलब सच्चिदानंद है, और उसके ऊपर ही दृश्यमान, दृश्यमान मतलब ये जो हमारे शरीर दिख रहे हैं, ये स्थूल जो है वो, ये जो स्थूल रूप है वह जीव का नहीं है, आपका मेरा नहीं है ये, लेकिन ये किसके द्वारा रचित है? माया के द्वारा, जिसको हम एक और इसका नाम क्या कहते हैं? प्रकृति। और ये किसके द्वारा प्रकृति ने कैसे रचा है? महत तत्व के द्वारा, महत तत्व आदि के द्वारा, जो कि गुणों से आया है। अब तो समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये बात नए व्यक्ति को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, इसीलिए पहले बोला गया जन्म एक गुहे बातें हैं। ये बातें जो साधना नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा। आप में से किसी को भी कठिनाई हो रही है तो बताइए, ये समझ में आ रहा है? ये शरीर तो है लेकिन हमारा ये जो अध्यास है ये ठीक नहीं है। अरे अभी काल्पनिक, तो अपने जो हम पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े ही नहीं, आप आगे कैसे पहुंच गए? अरे भाई सुनो तो सही मेरी बात। अभी मैं केवल जीव परक व्याख्या कर रहा हूं, फिर अभी परमात्मा परक व्याख्या करूंगा मैं। तो कल्पना क्या है? क्या कल्पना है? काल्पनिक है, पहले जीव के संबंध में समझ लीजिए। मैं आपको ये शरीर मान रहा हूं, ये मेरी कल्पना है। मैं अपने आप को ये शरीर मान रहा हूं, ये कल्पना है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर नहीं है, ये समझ में आया? इसी प्रकार से भगवान को ये सोचना कि ये जगत भगवान है, यह कल्पना है। और ये कल्पना भी कुछ लोगों के लिए लाभकारी है, जो लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप की चिंतन नहीं कर सकते। समझ में आया बात? जिस प्रकार से जीव के ऊपर ये भौतिक शरीर, हमारे भौतिक शरीर का आरोपण कर देते हैं लोग कि भाई ये व्यक्ति है ऐसे, वो व्यक्ति ऐसे हैं, स्थूल और सूक्ष्म भी, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वह सूक्ष्म रूप से बोला क्रोधी है, ये है वो है, जो कुछ भी आप दुर्गुण हम सोच रहे हैं वह क्या है, सूक्ष्म शरीर का, और वह किस पे आरोपित हो रहा है। और ऐसा मत सोचे कि दूसरे ही कर रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं अपने ऊपर, कितना सुंदर लग रहा हूं मैं, कितना बुद्धिमान हूं, ये सब जो है ये हमारा जीव के ऊपर इन स्थूल और सूक्ष्म रूपों का आरोपण है। बहुत कठिन हो रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा ठीक। वैसे इसको उदाहरण से, अगला उदाहरण दिया जाएगा वो कल चर्चा करेंगे किस प्रकार से होता है, बड़ा रोचक है। आत्मा के स्थान में इसकी रचना हुई है, मैं देव हूं या मैं मनुष्य हूं ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। ना आत्मा देवता है, ना आत्मा मनुष्य है, ना आत्मा स्त्री है, ना पुरुष, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सोचने लगते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये एक व्याख्या, तात्पर्य प्रभुपाद जी अब भगवत परक व्याख्या ले रहे हैं। भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। ये समझ में आ गया कि विराट रूप का क्यों वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि विराट रूप जो है वो भौतिक है, उस पर ध्यान करने के लिए, श्रवण करने के लिए नहीं बोल रही है। जो एकदम निम्न चेतना का व्यक्ति है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो उत्कृष्ट चेतना वाला व्यक्ति है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह विराट रूप पर ध्यान करे, ठीक। विराट रूप जहां अभी हम भी इससे पहले भी चर्चा हो गई थी, ना तो भगवान के विराट रूप पर ध्यान करना है जो गीता में बताया गया था, और ना विराट रूप पर ध्यान करना जो भागवत में बताया गया, हमें दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। यहां जो बात विराट रूप की आती है, जो प्रभुपाद बताएंगे दूसरे स्कंद में जो वर्णन आया विराट रूप का, कि ब्रह्मलोक जो है उनका उनका मस्तक है, पाताल उनके चरण ऐसे करते, उसमें भी कुछ कुछ अंतर है, स्थविष्ट रूप इत्यादि, लेकिन जो भी सारे हैं ये हम भक्तों के लिए क्या कहेंगे उसको, ध्यान के विषय नहीं है। विश्व रूप और विराट रूप में अंतर है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, अभी वो हम डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। विराट रूप की बात कर रहे हैं, विराट रूप जो है जो ब्रह्मा जो बताया गया है दूसरे स्कंद में, कि उनके चरण 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 जो है पताल है भगवान के, और उनके जो मस्तक है वह भगवान का, ब्रह्मलोक जो है उनका भगवान का मस्तक है, तो इस प्रकार की धारणा पे लोग करते हैं। अब इससे पहले भी एक बार आया था कि, और प्रभुपाद जी ने उस समय उस तात्पर्य में ये आया था ऋषभ देव की शिक्षाओं में, और ये चर्चा हो रही थी, वहां पे स्पष्ट बोल दिया था कि विश्व रूप और विराट रूप एक ही है, यही रूप भगवान ने गीता में दिखाया था अर्जुन को, अगर आपको याद है तो। हम लोग आप पांचवा स्कंद पांचवा अध्याय में ढूंढ लीजिएगा, हाँ तो वही बोलना, वही एक ही बात है, इसमें फिर क्या क्या कहा जाए, ना तो मैंने विश्व रूप देखा ना मैंने विराट रूप देखा, तो मैं कैसे कहूँ कि दोनों एक है कि नहीं है, तो ठीक है। क्योंकि पता है हम लोग को भेद क्यों लगता है, लगता है उसमें भगवान खा रहे थे उनको, चबा रहे थे, तो कुछ अलग होंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यहाँ पर बात बोलना विश्व रूप विराट रूप एक ही बात है, तो एक ही बात मान के चलिए बस, ठीक है। अब उससे अधिक क्या बोल दूं, ठीक है। लेकिन बात यही है कि जो विश्व रूप भगवान ने दिखाया या विराट रूप दिखाया वह भौतिक था, ठीक है, और उस पर भगवान के भक्त ध्यान नहीं करते। यह तो केवल अर्जुन ने इसलिए प्रश्न किया था कि अन्य लोग समझें कि कृष्ण की भगवत्ता समझ के बारे में समझें, अन्यथा उस पर ध्यान करने के लिए उसको पसंद नहीं करते हैं अर्जुन, और इसीलिए कारण से नहीं मैं भयभीत हो रहा हूं, मुझे नहीं देखना है। हाँ, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता जैसा कि बद्ध जीव में होता है। उनके शरीर तथा आत्मा में अंतर नहीं होता, किनके शरीर में, भगवान के बारे में। देह देही विभेदोयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित, देह और देही का भेद भगवान में कभी भी नहीं होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है, उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। तब कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे अगर विराट रूप का सब काल्पनिक है तो फिर आप उसको क्यों वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की धारणा ही इसे ऊपर नहीं जा सकती है। मुझे सर बता रहे थे, मैं तो मिला नहीं, आईआईटी में प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि कहीं कोई पे एक माता जी थी, उनको कहते हमें 11वां अध्याय बहुत अच्छा लगता है विराट रूप का वर्णन, तो कुछ लोगों की ऐसी मति है कि उनको विराट रूप ही अच्छा लगता है, बड़े बड़े भगवान है ऐसे करके, है ना। और हम लोग को गौर नेताज प्यारे से छोटे से अच्छे लगते हैं, इनको हम माला पहना सके। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक जगह बोलते हैं कि अरे भाई भगवान तो विराट रूप भी दिखा सकते हैं आपको, लेकिन आप ये बताइए कि उन्हें ड्रेसिंग कैसे करेंगे, इतने इतने बड़े हैं, इसलिए भगवान कृपा करके छोटे रूप में आते हैं ताकि आप उनकी सेवा कर सके। यस प्रभु, माइक पे पूछिए।
भगवान के सारे अवतारों में देह और देही का भेद नहीं होता?
भगवान के सारे अवतारों में देह और देही का भेद नहीं होता है क्या? देखिए स्वांशों में तो स्पष्ट है कि नहीं होता है, अब शक्ताविश में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जीव को शक्त है। अब डिपेंड करता है, देखिए जैसे नारद जी के बारे में स्पष्ट सुना है कि उनका शरीर पूरा चिन्मय शरीर है, एकदम स्पष्ट है, तो उसमें किसी विशेष जीव को कुछ शक्ति देते हैं तो बड़ा कठिन है कहना, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात है कि शक्ताविश अवतार वैकुंठ में भी होते हैं, ये हमने पढ़ा था, तो वहां भी वही बात आएगी, जैसे कि भगवान के विष्णु के विष्णुदूत अगर यहाँ पे आते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें देह और देही का भेद होता है। स्वांशों के बारे में तो स्पष्ट है, शक्ताविश अवतार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इस जगत में दिख रहे हैं तो हर व्यक्ति भौतिक है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक मिनट, चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन है, मैंने फिर से वर्णन बताया था कि जो भगवान के भक्त हैं वो भी जब यहाँ पे आते हैं तो उनका शरीर चिन्मय होता है, स्पिरिचुअल होता है। ये वहां पे आता है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, उसमें आगे बढ़ाया जाता है। ये रामानंद राय के गुणगान के संबंध में है, जो जब प्रद्युम्न मिश्र जो है उनके जाकर के, और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर जो है वो चिन्मय है, भले उसमें फोड़े होते हुए दिख रहे हैं लेकिन वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो हमारी तो भी धारणा ही नहीं है तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, कैसे एक दिव्य पार्षद का शरीर होता है समझना मुश्किल है। लेकिन आप जानते हो ना नरोत्तम दास ठाकुर जी केवल गंगा जी में प्रवेश किए और दूध बन गया उनका शरीर, और मध्वाचार्य जी के ऊपर फूल चढ़ाते रहे और अप्रकट हो गए। तो आपको लग रहा है कि वो सामान्य जीव जैसा है लेकिन बड़ा कठिन है समझना। हाँ रामानुजाचार्य जी का शरीर आज तक ऐसे प्रिजर्व है, केवल उसमें कुछ ऑयल इत्यादि लगा देते हैं बस। हाँ तो ये बड़ा नाखून भी बढ़ता है तो बड़ा कठिन है, इस प्रकार से अचिंत है समझना, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। देखिए पॉइंट क्या है कि अगर हम अभी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अभी उसको समझ लीजिए रात पर, तो उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोगों के भौतिक रूप को उनके पांव हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। तो मोहित प्रभु आप समझ पा रहे हैं कल्पना क्या है, वो जो प्लैनेट्स हैं वह कल्पना नहीं है, भगवान कल्पना नहीं है, लेकिन उनका आरोपण कल्पना है। यह कहना कि ये जो विराट जगत है ये भगवान, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंद विग्रह सुना है ना आप, तो ये जो भौतिक जगत है उसकी धारणा इस प्रकार से करती है, कहीं कहीं कुछ भगवान का स्मृति हो, कनेक्शन हो, जो भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी एक आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि भले ही सब चीज है लेकिन प्रभुपाद जी ने सीधे हमको हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान करने के लिए बताया गया, भगवान के विग्रह पे ध्यान करने के लिए बताया। ऐसा नहीं कि आप पहले विराट रूप की धारणा करें फिर धीरे धीरे प्रगति करें, ऐसा नहीं। आप देखिए बताया ही नहीं, हम लोग बताते भी नहीं है इस प्रकार से धारणा करो, सीधे ही आओ आप सीधे भगवान की भक्ति में लग जाते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो विराट की धारणा नहीं कर रहे हैं। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो साक्षात आप ब्रजेंद्र नंदन, कभी ऐसे मन में ना आ जाए बात, ठीक है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति विग्रह को भौतिक मानता है उसको नारकीय बुद्धि कहते हैं, कभी नहीं मानना चाहिए। अर्चे विष्णु शिलाधीर, कभी भी भगवान के अर्चा विग्रह को शिला नहीं मानना चाहिए। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव दीक्षितों के लिए होते हैं, तो ये नव दीक्षित जहां भी होते हैं इस्कॉन के नव दीक्षितों के लिए नहीं होते, ठीक है। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते, भगवान के भौतिक बोध की करना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। समझ में आ रहा है, जो विराट रूप है उसकी गणना भगवान के अवतारों में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहां तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। अब आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी दोनों टीकाओं को ले लिए। ये जो प्रभुपाद जी टीका फॉलो कर रहे हैं वह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की है, वह परमात्मा परक व्याख्या कर रहे हैं, और श्रील श्रीधर स्वामी जी जीव परक व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी दोनों को लेके मिला दिए। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था, यस। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है, स्पष्ट है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। धारणा काल्पनिक है, मोहित समझ में आ रहा है? विराट रूप भी है लेकिन धारणा काल्पनिक है, भगवान नहीं है वो। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक है। मूल शरीर मतलब जो स्वरूप होता है। तो हमने क्या सीखा, मैं रिवाइज करा देता हूं। हमने इस श्लोक में यह सीखा कि भगवान का जो विराट रूप है, भगवत पर व्याख्या कर देते हैं, भगवान का जो विराट रूप है वो भगवान नहीं है, वो भगवान से अलग है। अलग है अर्थात यह सच्चिदानंदमय नहीं है। और इस पे धारणा की जाए, कल्पना की जाती है उन लोगों के लिए जो भगवान के सच्चिदानंदमय पे ध्यान नहीं कर सकते। ये क्लियर। और यह जो स्वरूप है ये किसके द्वारा रचित होता है? महदादिबी के द्वारा, महातत्व इत्यादि के द्वारा, माया के द्वारा रचित है। एक जीव के लिए क्या बोलेंगे कि ये जो जीव है, जीवात्मा जो है, इसका जो स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप है वह जीव जीव उससे पूरी तरह से भिन्न है, अप्राकृत रूप से रहित है, चिदात्मक रूप है और ये माया के द्वारा रचित किया जाता है, माया का विलास है। तो यह अविद्या के कारण जीव अपने को इस देह से पहचान कर रहा है और जब भगवान की भक्ति करता है तो यह अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, मेरे तरफ से दुख से कोई संबंध ही नहीं था। इसलिए लिंक क्या है, इसलिए जो भगवान के कीर्तन करता है उसकी बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा उसकी अविद्या का नाश हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति सुबह और शाम इस कथा को सुनता है उसका दुख समाप्त होता है। ये लिंक समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ प्रभु पूछिए।
जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग,
थोड़ा माइक पे पास पे बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ
हरे कृष्णा।
हाँ
कुछ लोग भगवान का मतलब सुंदर रूप पे ध्यान नहीं कर पाते तो विराट रूप के लिए बताया।
हाँ
तो उनकी गति क्या होती है?
पता नहीं गति क्या होती है, पता नहीं का मतलब मैं भूल गया अभी। मैंने तो कुछ चीजों पे देखिए हम ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना। अभी महाराज से कोई व्यक्ति पूछ रहा था, वृंदावन चंद महाराज से, और रिकॉर्डिंग भेजा तो वृंदावन बिहारी पर पूछ रहे थे, तो महाराज बोले अरे भाई हम हर चीज की धारणा थोड़ी ना है, हम एनसाइक्लोपीडिया समझे आप हर चीज की धारणा थोड़ी ना है, पढ़ना पड़ेगा ना उसको तब बताएंगे। तो वही बात है कि यार हमें सिद्धांत पकड़ लेना है। आपको अगर पढ़ना है कि क्या गति होती है, कैसे प्रगति करते हैं, तो आपको दूसरा अध्याय दूसरा स्कंध पढ़ना होगा। फर्स्ट क्या कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, उसे पढ़ते हैं भक्त लोग, उसमें खास कोई रुचि नहीं होती। कुछ चीजें हम सिद्धांतिक रूप से समझ लेते हैं, उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करते क्योंकि हमारा भक्तों का मुख्य होता है कि भगवान के तत्व को समझें और लीला को समझें। अब विराट रूप के बहुत ज्यादा व्याख्या करने से हमें खास लाभ नहीं होते, उसमें उस पर ज्यादा हमें ध्यान करना ही नहीं है। ये बात ठीक है। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु।
आपने अगर मैं ठीक से समझाऊं, मतलब भगवान है, भगवान का विराट रूप है, लेकिन भगवान विराट रूप नहीं है, ठीक है। हाँ। और उसी तरह से अगर आप जीव के प्रति आ जाए, ये देह है,
हाँ।
आत्मा भी है, यानी
हाँ।
कि मैं भी हूँ,
हाँ।
मैं ये देह नहीं हूँ,
हाँ। ना तो मैं स्थूल देह हूँ ना सूक्ष्म हूँ। विराट के भी दो रूप होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों ही भगवान नहीं है।
और प्रभु जी उन्होंने कुछ कहा था कि
जीव के ऊपर ये शरीर एक दंड है,
ये शरीर जो है जीव के ऊपर दंड है।
यस।
इसको उपलक्षण में ये मन, ये बुद्धि, ये भी एक दंड है जो हमें
देखिए प्राप्त होता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही दंड है। आसन्नपि क्लेशद आशदेह, लेकिन बहुत सुंदर, जैसे ही अग्नि लकड़ी में रहती है और अपने ही मतलब स्रोत को जला के खत्म कर देती है, उसी प्रकार से इन्हीं ये शरीर और मन ये हमें दुख देते हैं, लेकिन इन्हीं का उपयोग जब हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो यही हमारे ये जो भक्ति हम इसके द्वारा संपादित करते हैं ये स्वयं इस शरीर के कारण को समाप्त करती है। उदाहरण समझ में आया? बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया, भागवत का उदाहरण है, समझ रहे हैं उदाहरण कि भाई ये लकड़ी है, लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, अग्नि तो अलग है लकड़ी से, लेकिन ऐसे प्रकट नहीं होगी, जब घर्षण करेंगे लकड़ी का तो अग्नि प्रकट होगी और प्रकट होकर स्वयं ही लकड़ी को जला देगी। उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से ये शरीर दो एकदम जड़ है, लेकिन इन्हीं से इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली आप कहेंगे स्वरूप शक्ति का विकार, ठीक है सब कुछ है, लेकिन साधन तो शरीर है ना। मन से, इंद्रियों से, शरीर से, वाणी से भगवान की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? मुझे बताइए, वैसे क्या मुझे पता है कि आप क्या ऑब्जेक्शन करेंगे, मुझे आपके ऑब्जेक्शन प्रेडिक्ट कर सकता हूं।
ये जो एनालॉजी है प्रभु जी,
हाँ,
तो जो सेवा को आप जो आग बोल रहे हैं, इससे जो इंद्रियां और मन मतलब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जल रहा है,
हाँ,
तो इसके साथ साथ जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जल जाएगी तो आग भी खत्म हो जानी चाहिए।
हाँ ठीक है, लेकिन देखिए कोई भी उपमा एक पक्षी होती है, आप उपमा को हम रबर पूरा तो नहीं खींच सकते, ये मैंने नहीं बोला है इसको, ये भागवत में तो मैं दिखा दूंगा आपको।
एक्चुअली वो आग को ज्ञान से बताया गया, जो ज्ञान ये मार्ग लेते हैं ना, तो फिर वो ज्ञान
देखिए ठीक है अगर आप ऐसे करेंगे, लेकिन भगवान का भगवत ज्ञान, अब हरि नाम जप कर रहे हैं ठीक है, हरि नाम जप कर रहे हैं जीभ से कर रहे हैं, तो इसी से हमारा विद्या नष्ट नहीं होती। सिंपल सिंपल एनालॉजी देना चाहिए, ज्यादा देखिए भक्तों को हम ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते ठीक है ना, सीधे सीधे अर्थ समझ लेना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति अपने इंद्रियों से करते हैं तो ऐसा नहीं कि भक्ति समाप्त हो जाती है, केवल इस पक्ष में लेना चाहिए कि जो हमारा अविद्या है वो नष्ट हो जाए। ये तो हमने सुन रहे हैं ना कि जब भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्ति करते हैं अपने इंद्रियों से तो कर रहे हैं ना, कहीं और से तो नहीं कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये इंद्रियां जब भोग में प्रवृत्त होती हैं तो हमारे ज्ञान को बढ़ा रही हैं, लेकिन जब यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही हैं तो ये जो स्थूल इंद्रियां ये समाप्त हो जाएंगी। अब प्रभुपाद इसको बहुत सिंपल तरह से कहते हैं दूसरे स्कंद में, बहुत अच्छे तरह से, भगवान के नाम जप का प्रभाव मिथ्या अहंकार के नष्टीकरण के द्वारा प्रस्तुत होता है। हिंदी अच्छी नहीं आ रही है, इंग्लिश में अच्छा था। द इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग इज एक्सपीरियंस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉल्स ईगो। अपने आप ही हम अपने आप को देख पाएंगे शरीर और स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग। इसको हम अगर भगवान ने चाहा नारद जी की शिक्षा में स्पष्ट देखेंगे, क्योंकि मैं जैसे ही मेरा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ मैं तुरंत समझ गया, अरे मैं तो अज्ञान के कारण ही अपनी अपने को स्थूल और सूक्ष्म देहों से पहचान कर रहा था। जैसे स्वप्न में हम लोग परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि उस देह से हमारी पहचान करते हैं, कोई मतलब नहीं उससे, कोई पहचान नहीं है उससे, लेकिन ऐसी पहचान करने के कारण तो यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे रुकते हैं, अगर किसी और प्रश्न नहीं है। श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।